हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानस राजहंस। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठा विरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्व। करारविंद न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति। ब्रजे वसंतं नवनीत चोरं गोपांगनानं चदुकूल चोरं। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं। चोरा यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्ण श्यामं मनसा स्मरामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 14 जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना। जब अर्जुन द्वारिका से वापिस लौटे और अर्जुन को दुखी चेहरा नीचे हुआ देखा, तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने उससे कई प्रश्न पूछे कि आखिर इसका कारण क्या है जो तुम इतना ज्यादा दुखी दिख रहे हो। पहले भगवान के परिवार वालों के प्रति संबंधियों के प्रति, भगवान के पुत्रों के प्रति, उनके पौत्रों के प्रति प्रश्न किया कि वो सब ठीक तो हैं, कहीं उन्हें कोई हानि तो नहीं पहुंची है, उनकी पत्नियां और उनकी जितने भी दूसरे संबंधी हैं वो सब वहां पर द्वारिका में कुशल से तो हैं। फिर ऐसे पूछते पूछते युधिष्ठिर महाराज को लगा कि द्वारिका में कोई आपत्ति कैसे आ सकती है, द्वारिका में कोई दुखी कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो कृष्ण रहते हैं। तो कहने लगे, मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलं भूता वाद्योनंत सखः पुमान्। परम भोक्ता आदि भगवान तथा आदि भगवान अनंत बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त विश्व के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठवासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। जब साक्षात भगवान है वहां पर, जब साक्षात अनंत शेष, अनंत फेण शेषनाग जी बलराम के रूप में वहां पर है, तो वो कृष्ण और बलराम के होने से यदुकुल, जितना भी यदुवंश है, द्वारिकावासी हैं, वो तो सुरक्षित हैं। तो वो भौतिक लोग की तरह नहीं, वैकुंठ वासियों की तरह आनंद भोग रहे हैं, क्योंकि वो सब जो उनकी पत्नियां हैं और जो द्वारिकावासी हैं, वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं उनकी रानियां। तो फिर वो ना केवल भौतिक वस्तुओं का आनंद लेती हैं, बल्कि जो स्वर्ग के देवताओं के रहने के योग्य या उनके आनंद भोग्य के जो वस्तु हैं, वो भी वहां पर उनको प्राप्त है। तो जो इतने बड़े बड़े वीर हैं, वो सब वहां पर जो भी हैं यदुवंशी में, वो सब भगवान की बाहों द्वारा सुरक्षित हैं। यद बाहुदंड भा, जो भगवान की बाहों द्वारा सुरक्षित हैं, सभी प्रकार से निर्भय हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा सभा में पड़ते हैं, क्योंकि भगवान वहां पर सुधर्मा सभा में है। और वो सुधर्मा सभा कैसी है, जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, और उन देवताओं से भी छीन कर द्वारिका वासियों ने भगवान को प्रदान किए। वहां पर भगवान आनंद से हैं और भगवान बलराम है वहां पर। तो वहां के किसी भी जीव को कष्ट हो ऐसा तो संभव नहीं है। तो फिर आज युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को कुछ और बातें कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपके दुख का कारण ये हो सकता है। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा उनके चेहरे पर, तो अत्यंत दुख उन्हें दिख रहा था। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं श्लोक नंबर 39 में, कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासिनी अलब्धमानो व्यख्यात किं वातात चिरोषितः कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो वख्यातः किं वातात चिरोषितः कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्टतेजा। कच्चित मतलब कहीं तुम्हारे, अनामयम यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो। अनामयम का मतलब होता है किसी की तबीयत खराब होती तभी भी तो फेस ऐसा मुरझाया हुआ लगता है ना। तो अर्जुन का तेज खत्म हो गया। तात कहते हे भ्राता, मैं छोटे भाई, भ्रष्ट तेजा, आपके शरीर की, आपके मुख की कांति, आपके मुख का तेज जो है वो कैसे समाप्त हो गया, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है। विभासी ऐसा लगता है कि अलब्धमाना और अवज्ञाता, ऐसा लगता है अलब्धमाना यानी आपको वहां पर मान सम्मान नहीं मिला है, जहाँ से अभी आप आए हो द्वारिका में, वो सब भगवान की कृपा से बहुत ज्यादा अहंकार वाले हो गए लगता है, आपको मान सम्मान नहीं दिया, अवज्ञा, आपकी अवज्ञा की है, आपको दुखी किया है। और किम वा तात, क्या ऐसा है, क्या तुम्हें वहां पर उपेक्षित किया गया है, क्या वहां पर तुम्हें मान सम्मान नहीं मिला है, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, आप मुझे, क्योंकि आप इतना समय चिरोषिता, क्योंकि आप बहुत समय वहां पर रहे, इसे लगता है कि आपकी मान हानि हुई है, इसीलिए आपका तेज जो है वो खत्म हो गया है और आप दुखी दिख रहे हो। अनुवाद देखिए, मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है, क्या द्वारिका में दीर्घ काल तक रहने से, अन्यों द्वारा सम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते, महाराजा युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारिका का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक भगवान श्री कृष्ण वहां थे तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी, लेकिन साथ ही अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे, अतएव राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछे कि क्योंकि तुम दूसरों के घर में बहुत दिन तक रहे थे, यहाँ से हमें दिखाया जा रहा है कि हमें दूसरों के घर में दीर्घ काल तक नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपने घर पे आना चाहिए, थोड़ी देर के लिए किधर जाएं। आजकल लोगों को शौक होता है दूसरों के घरों में जाकर एंजॉय करने, कभी उसके घर में कभी उसके घर में, इससे क्या होता है, अपेक्षा होती है, हमारा सम्मान जो है वो समाप्त तो हो जाता है, अवज्ञा होती है। तो जीव को अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए दूसरों के घरों में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने घरों को, कोई लोग ऐसे होते हैं बस दूसरों के घर में, कभी वहां पर जाके पार्टी बनाओ, कभी वहां पर जाके करो, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर बताया कि अलब्ध माना अवज्ञात, लोगों का मान सम्मान नहीं होता है जो बार बार सबके घर में जाते रहते हैं और उनकी अपेक्षा होती है। तो अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि क्योंकि तुम इतना टाइम वहां पर रहे, कहीं तुम्हारा सम्मान अपमान तो नहीं हुआ वहां पर, और आगे पूछते हैं, आगे कहते हैं श्लोक नंबर 40 में, कचिन्नाभिहतो भावै शब्दादिभिरमंगलै न दत्तमुक्तम् अर्थिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्। कचिन्नाभिहतो भावै शब्दादिभिरमंगलै न दत्तमुक्तम् अर्थिभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम्। यहाँ युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से कह रहे हैं, कच्चिन नाभि हतो, ऐसा लग रहा है कहीं आपके साथ ना आपको शब्द बहुत बुरे शब्द आदि, मेरा मंगल है कि बहुत ही अशुभ शब्दों से तो तुम्हें नहीं बुलाया गया है, आपका अपमान तो नहीं किया गया वहां पर बहुत ज्यादा। कच्चिन नाभि हतो अभाव है, कहीं आपको गलत शब्दों के साथ वहां पर तो बात नहीं की गई आपके साथ, मतलब आपको उल्टा सीधा शब्द तो नहीं कहे गए, क्योंकि पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कहा था श्लोक नंबर 2.34 में, अकीतिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिम मरणा दतिरिच्यते, कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरणा दतिरिच्यते, मरने से भी अधिक होता है। तो आज युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को इतना दुख लग रहा है, वो कब से आया है मुझे बता भी नहीं रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे बहुत उसका अपमान किया गया हो वहां पर, और उनको साथ में ऐसा लग रहा है न दत्त मुक्तम अर्थिभ्य, अर्थिभ्य मतलब जो याचक आता है, तो एक क्षत्रिय का एक राजा का कर्तव्य होता है कि जो भी याचना लेकर आपके पास आए तो अवश्य उसको मतलब उसको किसी तरह से उसकी याचना को पूरा करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि अर्जुन अपना ये कर्तव्य तो नहीं ना पूरा कर सका, उसी के कारण दुखी हो। कच्चित ये बोलते कि न दत्तम, नहीं दिया उक्तम, जो उसने पूछा उसने कहा, उक्तम मतलब जो उसने कहा, अर्थी भी जो याचक ने जो चीज मांगी वो, ऐसा तो नहीं तुम नहीं दे सके। आशया यत प्रतिश्रुतम, आशा से यत जो प्रतिश्रुतम यानी दिए जाने के लिए पहले से, अगर किसी ने पहले से ही प्रॉमिस कर दिया हो कि मैं तुम्हें ये दूंगा, और जब वो आए आपके पास और आप उसको वो वस्तु ना दे सको तो कितना दुख की बात है। तो उसी लिए पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से, कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे हैं, या तुम्हें धमकाया तो नहीं है? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? वास्तव में भक्तों, आज के जो न्यू जनरेशन है ना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके पास कोई भी आता है याचक, तो फिर हम बोलते नहीं भाई मेरे पास नहीं है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, कोई यदि आपसे कुछ मांग रहा है तो उसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वो खुद से वो चीज नहीं जुटा पा रहा है, इसलिए आपके ऊपर भरोसा रखा है कि मैं इससे मांगूंगा तो मुझे मेरा वो मेरी वो समस्या हल हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसे नहीं दे सकते हैं तो हमारे दुख की बात होनी चाहिए। और दूसरा ये, आज का जीव जो है वो सदैव अपने वचन तोड़ देता है, किसी को बोल देता है कि हाँ मैं आपकी ये काम करूंगा, या आपको ये प्राप्त कराऊंगा, या कुछ भी कोई भी वचन देता है, सोचता नहीं है। ये मनुष्य आज के मनुष्य में सत्य नहीं है। एक वो भी दौर है जब कहा जाता था प्राण जाए पर वचन ना जाए, एक बार मैंने बोल दिया तो भले ही मेरी जान चली जाए मैं अपने बात से नहीं टलूंगा। लेकिन आज के जीव को इस बात की कोई एहसास नहीं होता इस बात का कि मैंने किसी से कोई वचन किया है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था, अर्जुन को वाकई दुख होता अगर उससे कभी ऐसा हुआ हो कि उसने अपना वचन पूरा ना किया हो। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज उससे पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना वचन ना निभा पाए हो आप? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब दान देने के लिए कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र, देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इसी प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती हैं और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है, और यही अर्जुन की विपन्नावस्था का कारण हो सकता था। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बता रहे हैं कि कुछ लोग धनी होते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हम पर यह कृपा की है, तो अगर कोई सुपात्र व्यक्ति हो, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने एक बात खास तौर पर बताई है कि अवश्य देश, पात्र और काल का विचार करना चाहिए कि इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और वो वास्तव में योग्यता रखता है मेरे दान का। ऐसा नहीं कि मैं उसको दान में 100 रुपए दे दूं और वो बाहर जाके शराब पीना शुरू कर दे तो उसका अपराध भी मुझे लगेगा। तो उसी तरह से देश, काल और पात्र का विचार करके धनी व्यक्ति को दान देना चाहिए। अवश्य जो जो गृहस्थ है स्पेशली, उनका ये कर्तव्य है कि जो ब्राह्मण है, जो शुद्ध भक्त है, वो उनको दान दें ताकि वो प्रचार अच्छे तरीके से कर सके। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम वचन देते हैं कि भाई हाँ आपको दान देंगे, लेकिन समय थोड़ा हो जाता है, फिर हम लोग सोचते हैं छोड़ दो अभी नहीं देते। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो वचन किसी को दिया है तो अवश्य पूरा करना चाहिए। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें बहुत दुख होना चाहिए, शोक होना चाहिए इस बात का। और अगर ऐसा करेंगे तो वास्तव में मनुष्य आलोचना का भागी बनता है, फिर उसको लोग बुरे शब्दों से याद करते हैं। तो हो सकता है क्या अर्जुन के साथ ऐसा हुआ हो कि उसने किसी को प्रॉमिस किया हो और वो ना निभा सका हो, इसीलिए दुखी है, ये कारण भी हो सकता है। ये सारे कारण वो बता रहे हैं जो कि एक जीव अगर उसके साथ हो तो उसको उसके लिए दुखी होना चाहिए। आज का मनुष्य इस बात को नहीं सोचता है, लेकिन वास्तव में वो समय दुखी दुख का है जब हम किसी से प्रॉमिस करें, किसी से वचन लें और उसको पूरा ना कर सकें। कच्चित्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं क्षणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रद। कच्चित्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धिं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदं। कच्चित्वं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ब्राह्मणम यानी ब्राह्मणों को, बालम अर्थात बालक को, गाम अर्थात गाय को, वृद्धम अर्थात बूढ़े व्यक्तियों को, रोगिणम अर्थात मरीज जो रोगी होते हैं उनको, स्त्रियम यानी स्त्रियों को, शरण उपसृतम यानी रक्षा के लिए आपके पास कोई बालक आया हो, कोई ब्राह्मण आया हो, गाय हो, या कोई बूढ़ा व्यक्ति रोगी या कोई स्त्री आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपके पास वो रक्षा के लिए आए हो। सत्वम न अत्याक्षी, लेकिन उनको आपने रक्षा प्रदान नहीं की, उनको शरण नहीं दी। शरणम प्रदा, जो शरण देने के पात्र हैं, अब ये जैसे भी नाम बताए, जैसे बालक है, ब्राह्मण है, स्त्री, उनको क्षत्रिय को उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन आज दुखी थे तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वास्तव में शरणप्रद हैं, जो शरण देने योग्य हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने उनको शरण न दी। तो तुम तो सदैव अपने शरणागत आए हुए समस्त लोगों का को शरण प्रदान कर रहे हो, तो कहीं ऐसा न हो जो शरणप्रद, शरणप्रद मतलब जो शरण का पात्र हो उसको, वो तुम्हारी शरण में आया हो लेकिन अत्याक्षी, शरण नहीं दी हो। अनुवाद देखिए, तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो, क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सकते, नहीं दे सके, इसलिए तुम दुखी हो? तात्पर्य, शपप्पा जी कहते हैं, ब्राह्मण लोग समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं, अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। इसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की आवश्यकता रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राज्य की ओर से संरक्षण नहीं मिलता तो यह क्षत्रिय या राजा के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के स्थान साथ सचमुच ही ऐसी घटनाएं घटती थीं, तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने के इच्छुक थे। प्रभुपाद की जय हो। आज हमारा समाज बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर गौ और ब्राह्मणों की रक्षा नहीं हो रही है, स्त्रियों की रक्षा नहीं हो रही है, रोगियों की रक्षा नहीं हो रही है, इसीलिए सब और दुख और ना कष्ट है। ब्राह्मण जो वास्तव में विद्वान है और विद्या अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक विद्या देने के लिए इस भौतिक जगत में है, उनको संरक्षण प्रदान नहीं किया, हर जगह लालच ही लालच है, इसलिए संसार या हमारा वातावरण इतना दूषित हो गया। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को और बच्चों को और स्त्रियों को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। आज स्त्रियां भी स्वतंत्रता चाहती हैं, किसी के संरक्षण में रहना नहीं चाहती, बालक अपनी बात मनाना चाहते हैं, और इस तरह से पूरा समाज बिगड़ गया है, क्योंकि क्षत्रिय राजा अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। जो राजा है, जो वास्तव में गवर्नमेंट है, उसको जो कार्य करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसके कारण पूरा समाज बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके पास आया हो जो शरण देने योग्य हो, यानी स्त्री हो या ब्राह्मण हो या रोगी हो या बालक हो, और आपने उसको शरण प्रदान नहीं की, इसीलिए आप दुखी हो। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो बहुत लज्जाजनक बात होती है क्षत्रिय के लिए कि वो उसकी शरण में आए कोई शरण प्राप्त करने के लिए, रक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो उसकी सुरक्षा ना कर सके। आगे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज बोलते अगर ऐसा नहीं है तो शायद ऐसा हो सकता है। कैसा? आगे कहते हैं श्लोक नंबर 42 में, कच्चित्वं नागमो गम्यं गम्यं वासत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नासत्समये पथि कच्चित्वं नागमो गम्यं गम्यं वासत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नासमये पथि कच्चित्वं नागमो गम्यं गम्यं वासत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्नासमये पथि कच्चित्वं नागमो गम्यं न आगमो, मतलब गम्यं का मतलब होता है कि अगम्यम का मतलब होता है दुष्चरित्र, ऐसी स्त्री जो कि चरित्रवान नहीं होती है उसके साथ। वो कहते कच्चित्वं नागमो गम्यम, कहीं ऐसी दुष्चरित्र स्त्री के साथ तुमने संपर्क तो नहीं कर दिया है। अगम का मतलब होता है संपर्क करना या संग करना। और आगे कहते हैं वह असत्कृतम स्त्रियम, या फिर स्त्री के साथ तुमने कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया है। ये बहुत ही बड़ा अपराध है, हमारा शास्त्र इसे कभी स्वीकार नहीं करता कि स्त्रियों के साथ कोई अनुचित व्यवहार किया जाए। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं अर्जुन से, कहीं तुमसे किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो गया, या तुमने किसी दुष्चरित्र स्त्री के साथ संभोग तो नहीं कर दिया, या फिर आगे कहते हैं पराजितो वाथ भवान नोत्तम है, ऐसे व्यक्ति के साथ जो तुम्हारे से कम हो, मतलब शक्ति में तुमसे कम हो, और आगे कहते हैं अनासमय या फिर आपके समान हो, ऐसे व्यक्ति के साथ रास्ते में, पथी का मतलब होता है रास्ते में जब तुम आ रहे थे, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि तुमसे कम शक्तिमान है या फिर तुम्हारे बराबर का है, उसके साथ लड़ाई करने में कहीं तुम पराजित तो नहीं हो गए हो, हार तो नहीं गए हो। अनुवाद देखिए, क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निष्कष्ट है या तुम्हारे समान है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते इस श्लोक में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय परिस्थितियों में मुक्त समागम करने दिया जाता था। उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य या शूद्र जाति को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी सप्तमातृकाओं में से मानी जाती है। मातृकाओं मतलब सात माता होती है, उनमें से एक माना जाता है। कैसे? जैसे सात माताएं कौन सी होती है? हर एक व्यक्ति की सात माता होती है, एक अपनी, दूसरी गुरु की माता, दूसरी तीसरी ब्राह्मण की पत्नी, चौथी राजा की पत्नी, पांचवी गाय, छठी धाई, जो धाई होती है ना दूध पिलाते, तथा पृथ्वी, ये सप्त मातृकाएं हैं। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता है। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता था, अतएव कुत्सित माना जाता था। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है कि विवेक के साथ काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडम्बा आई थी और वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, व्यासदेव ब्राह्मण थे। उनसे पांडवों तथा धृतराष्ट्र को जन्म लेने के लिए कहा गया। सत्यवती धीवर जाति की कन्या थी, लेकिन ब्राह्मण पराशर द्वारा उससे व्यासदेव का जन्म हुआ। अतः स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम ना तो निंदनीय थे ना ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा ना बिगड़े या वर्ण संकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति ना फैले। क्षत्रिय के लिए यह निंदनीय है कि वह अपने से निम्न या समान बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति से हारना चाहिए। अर्जुन भीष्म देव से पराजित हुए थे और कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन का अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्म देव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे, चाहे आयु को लें, सम्मान को लें या बल को लें। लेकिन कर्ण अर्जुन के समान था, अतः कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था। अर्जुन को यह बुरा लगा, अतः कर्ण छल से मारा गया। क्षत्रिय के ऐसे से कार्य हैं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारिका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई, मतलब ऐसा तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि इस श्लोक से ये प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष और स्त्री को कतिपय परिस्थितियों में मुक्त समागम किया करने दिया जाता था। तो ये कतिपय स्थितियां जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताई है, लेकिन यह कलयुग के लिए नहीं है, क्योंकि कलयुग के जीवों की बुद्धि बहुत ज्यादा दूषित है। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर कि द्वापर युग में वेद व्यास जी ने अपने भाई की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करवाए, धृतराष्ट्र और पांडव। लेकिन आज इस कलयुग में ये सब बिल्कुल वर्जित है। इसी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, वह काम जो धर्म के नियमों के खिलाफ नहीं है, अर्थात केवल अपनी धर्म पत्नी के साथ, जो हमारी व्यवहारित धर्म पत्नी होती है उसी के साथ संभोग, तो यह काम जो है भगवान कहते हैं वह इतना पवित्र है जैसा मेरा अपना स्वरूप है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने दूसरा बताया कि युद्ध में यदि किसी पर बलवान पुरुष या ज्यादा शक्ति वाले पुरुष के साथ हार ले तो वो लज्जाजनक बात नहीं है। जैसे अर्जुन यदि भीष्म देव से हार जाते तो उसके लिए कोई लज्जित नहीं था, लज्जित होने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अपने से कम शक्तिमान या फिर अपने बराबर शक्तिमान व्यक्ति के साथ यदि हार जाते हैं तो ये लज्जित करने वाली बात है। तो अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण तुम्हारे मुख की कांति खत्म हो गई है, तुम्हारे मुख का तेज खत्म हो गया। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 43 में, अपि स्वित पर्यभूतस्थां अपि स्वित पर्यभूतस्थं संभूज्यान् वृद्ध बालका जुगुप्सितं कर्म किंचित् कृतवान् यदक्षमम् अपि स्वित् पर्यभुङ्क्तास्त्वं संभोज्यान् वृद्ध बालका जुगुप्सितं कर्म किंचित् कृतवान् यदक्षमम् अपि स्वित् पर्यभुङ्क्तास्त्वं अपि मतलब यदि ऐसा हो तो پاریہ منا ایک اور چھوڑ کر, کس کو؟ بونگ تاستا. ایک تو تم نے خود سے کھایا, بونگ تا مطلب کھا لیا ہو, تو ہم تم نے سم بھوجیا جو تمہارے ساتھ کھلانے کے یوگی ہیں, یعنی ورد جو ورد پرش ہیں یا بالکان بچوں کو. جیسے جو گرستی لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے بچوں کو اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو پرشاد کھلا دیں, اس کے بعد خود سے کھانا چاہیے. ینگ جو ہوتے ہیں ان کو بعد میں کھانا چاہیے, لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اپی سوئت پر یہ بھونگ تاستوم سمبوجیان وردھ بالکان. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ کھانے کے یوگی ہیں یا جو پہلے کھلانے کے یوگی ہیں ان کو ایک سائڈ چھوڑ کر تم نے پہلے سے ہی کھا لیا ہے. یا پھر جگوب ستم کرم کنچت. جگوب ستم کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی نندنیا کاریا, جو بہت ہی گھنت کاریا ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں تمہارا منہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جگوب ستم کرم کنچت, لگتا ہے تم نے کوئی بہت ہی زیادہ نندنیا کار کرتوان تم نے کر لیا ہے, جو نہ یرکشمم جس کو کوئی معاف نہیں, تمہیں لگتا ہے کہ یہ معاف کرنے کے یوگی نہیں ہے, جسے کشما نہ کیا جائے. اس کو بولتے ہیں یرکشمم, جو اکشم ہے. ایسا کاریہ لگتا ہے تم نے کوئی کیا ہے جس کے کارن تم بہت زیادہ دکھی ہو. انواد دیکھیے, کیا تم نے ان وردھوں تتھا بالکوں کی پرواہ نہیں کی جو تمہارے ساتھ بھوجن کرنے کے یوگی تھے؟ کیا انہیں چھوڑ کر تم نے اکیلے بھوجن کیا؟ کیا تم نے کوئی اکشمیہ غلطی کی ہے جو نندنی مانی جاتی ہے؟ شری پروپاد کی, شری پروپاد جی کہتے ہیں گرہست کا دھرم ہے کہ وہ پہلے بالکوں, پریوار کے بوڑھوں, برہمنوں تتھا اکشموں کو بھوجن کرا دے. اس کے اترکت آدرش گرہست کو چاہیے کہ یدی کوئی اکیات بھوکا ویکتی ہو تو اسے بلا کر کھلا دے اور تب سوئم بھوجن کھائے. مطلب کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے. گرہستی لوگ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارے آس پاس بھوکا نہیں ہے تو ہی وہ بھوجن کھائے. اسے ایسے بھوکے ویکتیوں کو سڑک پر تین بار بلانا چاہیے اور گرست کے لیے نردھارت اس کرتویہ کی اویلنا, وشیش کر بوڑھوں تتھا بچوں کی اویلنا اکشمیہ ہے, کہ ان کو دیکھنا چاہیے. اگر کوئی بوڑھا بھوکا ہے یا کوئی بچہ بھوکا ہے تو اس کے سامنے خود بیٹھ کے نہیں کھانا چاہیے, بلکہ پہلے ان کو کھلانا چاہیے, اس کے بعد کھانا چاہیے. تو اگر ایسا کوئی اپرادھ کرتا ہے تو یہ شاستر کے لحاظ سے یہ اکشمیہ ہے, اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا, یہ بہت بڑا اپرادھ ہے. لیکن آج ایسا ہوتا نہیں ہے, سب لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اتنا سب پوچھنے کے بعد اب انتم پرشن کر رہے ہیں یدھشٹھر مہاراج, اور یہ بہت ہی مہتوپورن ہے. یدھشٹھر مہاراج نے سب کچھ پوچھ لیا, جو وستو سے, جو بات سے کوئی ویکتی دکھی ہو سکتا ہے وہ سب کچھ پوچھ لیا, اور انتم جو ان کے ہردے میں ایک پارٹ ٹکی ہوئی تھی جو کب سے نکل نہیں رہی تھی اس کے وشے میں پوچھ رہے ہیں. وہ کہتے کچت پرشتتمے ناتھ ہردینا آتما بندھنا شونیوسمی رہتو نتیم منیسی تین یتھارک منیسی تین یتھانرک کچت پرشتتمیناتھ ہردینا آتما بندھنا شونیوسمی رہتو نتیم منیسی تین یتھانرک کچت پرشتتمیناتھ ہردینا آتما بندھنا شونیوسمی رہتو نتیم منیسی تین یتھانرک. کچت, کہیں ایسا تو نہیں ہے. پریشتتمے مطلب جو تمہیں سب سے زیادہ پریہ ہے, پریشتتم جو سب سے زیادہ پریہ ہے. اتھ میرا, اتھ مطلب ہے میرے بھائی ارجن, ہردے جو تمہارا ہردے ہے, یعنی کہ بولتے نا یہ میرا, مجھے दिल से प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है। आत्मबंधुना, जो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है, जो तुम्हें जान से प्यारा है, जो तुम्हारे दिल की धड़कन है, जिससे ज्यादा तुम और किसी से प्रेम नहीं करते। हृदय नात्मबंधुना शून्योस्मि रहितो, शून्योस्मि, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत शून्य प्रतीत कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा सब कुछ खो गया। शून्य, जब हमारे पास कुछ नहीं रह जाता, जब हम भले ही सब कुछ हो लेकिन जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि वो ही हमारे साथ ना हो तो भले ही संसार का सारा सुख भी हमारे पास हो तो भी हमें ऐसा लगेगा कि हम अपने आप को शून्य फील होता है, कि इसको बोलते हैं रिक्त अनुभव कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मन्यसी तेन यथा न रुक, मुझे लग रहा है कि जो तुम्हारा मानसिक ताप है, जो तुम्हारा दुख है, इसके अतिरिक्त उसका और कोई कारण नहीं हो सकता है। अनुवाद देखिए, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया है। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते, महाराज युधिष्ठिर ने पहले ही विश्व से भगवान कृष्ण के अदृश्य होने के आधार पर विश्व स्थिति भांप ली थी और अब अर्जुन की अत्यंत निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया, जो अन्यथा संभव ना था। अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिस तरह से अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे कि कहीं तुमसे कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया है जिसको क्षमा ना किया जा सके, लेकिन साथ में वो विचार करने लगे कि नहीं, अर्जुन से ऐसा कोई अपराध होना संभव नहीं है, तो यह इन सब कारणों के कारण दुखी नहीं होगा। वास्तव में तो जो नारद मुनि ने हमें संकेत किया था कि भगवान अपना कार्य समाप्त करके इस तरह धाम से जा रहे हैं, तो वास्तव में अर्जुन के दुख का कारण यही हो सकता है, क्योंकि अर्जुन का घनिष्ठतम प्रियतम मित्र है भगवान श्री कृष्ण और ये इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण जो उनके साथ सदैव रहते थे वो उनका साथ छोड़कर उसे अकेला इस दुनिया में छोड़कर चले गए हैं। इसी के कारण उन्होंने यह संशय भी युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से पूछ लिया और आगे सूत गोस्वामी आगे बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर हमारा श्लोक नंबर 44 में ये अध्याय जो चैप्टर नंबर 14 है वो समाप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना शीर्षक 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, के पैसात रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और गौरंगा को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण।